पृथ्वी ने अभिमन्यु से वादा किया था कि आशिका का ब्लड सैंपल लाना अब उसकी जिम्मेदारी है। वो नहीं चाहता था कि अभिमन्यु इस मामले को लेकर परेशान हो, इसीलिए उसने सब कुछ खुद ही संभालने का सोचा। पृथ्वी ने काफी कम समय में एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया और इसमें इनवाइट करने के लिए अभिमान और आशिका के पास पहुंच चुका था। अभिमान वैसे भी अभिमन्यु के किसी काम के लिए मना नहीं करता था, इसीलिए उसने बिना किसी सवाल के आने के लिए वादा कर दिया था। पृथ्वी वहां बहुत कॉन्फिडेंट होकर गया था, लेकिन इस वक्त वो अभिमन्यु के सामने खड़ा हुआ था। वहां क्या हुआ था वो पूरी बात बताने के बाद पृथ्वी का सिर झुका हुआ था और उसके चेहरे के भाव बिगड़े हुए थे। वहीं अभिमन्यु पूरी बात सुनकर हंस रहा था। किसी ने मुश्किल से ही उसे इस तरह हंसते हुए देखा होगा। तुम्हें क्या लगा था पृथ्वी, अगर ये सब इतना आसान होता तो मैं खुद ही कर लेता, अभिमन्यु ने सिर हिलाकर कहा। मुझे नहीं लगा था कि वो मुझे ये जवाब देगी, सिर्फ मैं ही नहीं अभिमान भी उसका जवाब सुनकर हैरान था। वो ऐसा कैसे कह सकती है, और इस तरह किसी दान पुण्य के काम को जल्दी से कौन मना करता है, पृथ्वी ने मुंह बनाकर हैरत भरे लहजे में कहा। उसे कुछ घंटे पहले की बात याद आ गई, जब वो अभिमान के केबिन में बैठा हुआ था। जब उसने ब्लड डोनेशन की बात अभिमान और आशिका को बताई तो अभिमान खुशी खुशी तैयार हो गया था। पृथ्वी के चेहरे पर विक्ट्री स्माइल थी, क्योंकि वो जानता था कि इस तरह के काम के लिए कोई मना नहीं करता। ऊपर से अभिमान भी आने वाला था तो आशिका के मना करने का सवाल ही नहीं था। फिर भी पृथ्वी ने आशिका की तरफ देखा और हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, आई होप आप भी वहां पर आएंगी आशिका, मिस्टर राजवंश ने मुझे खास आप दोनों को इनवाइट करने के लिए भेजा है। जब राजवंश फैमिली के लोग ब्लड डोनेट करेंगे तो लोगों को यही मैसेज जाएगा कि इस कैंपेन की शुरुआत उन्होंने खुद से की है। मैं आपकी बात समझ रही हूँ मिस्टर चौहान, बेशक मैं इसमें हिस्सा लेने के लिए आऊंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ब्लड डोनेट कर पाऊंगी, मैं अंडरवेट हूँ, डॉक्टर भी मेरा ब्लड लेने से मना कर देंगे, आशिका ने सपाट लहजे में कहा, जिस पर अभिमान और पृथ्वी उसकी तरफ आंखें फाड़ कर देख रहे थे। इस ऑकवर्ड मोमेंट से बाहर निकलने के लिए अभिमान हल्का सा खांसा और बोला, डोंट वरी ऐश, पहले सारे टेस्ट होते हैं और उसके बाद ही ब्लड डोनेट किया जाता है। हाँ हाँ मिस्टर राजवंश बिल्कुल सही कह रहे हैं, पृथ्वी ने जल्दी से कहा, अगर आशिका कैंपेन में आकर खून जांच करवाने के लिए भी तैयार हो जाती तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो अपना ब्लड डोनेट कर रही है या नहीं, उन्हें बस उनका सैंपल मिल जाता। उसकी भी जरूरत नहीं है, यहाँ आने से पहले मैंने अपने सारे टेस्ट करवाए थे और उसी में डॉक्टर ने मुझे बताया था कि मेरे अंदर खून की कमी है। मैंने उनके हिसाब से डाइट भी फॉलो नहीं की, मुझे लगता है कि अब तो मेरा खून और भी कम हो गया होगा। मैं नहीं कर पाऊंगी मिस्टर चौहान, लेकिन हाँ मैं आपकी मदद करने के लिए वहां जरूर आऊंगी, आशिका ने लाचार चेहरे के साथ कहा, जिस पर वे दोनों ही आगे कुछ नहीं बोल पाए। पृथ्वी को ये सब याद आते ही उसने गहरी सांस ली और कहा, कहीं उन्हें शक तो नहीं हो गया, ऐसे खुद से चलकर कौन बताता है कि मेरे अंदर खून की कमी है और मैं खूनदान नहीं कर पाऊंगी। वो आशिका सिंघानिया है और उसके साथ चीजें आसान नहीं होती। खैर छोड़ो, कल अगर वो आ भी जाए तो देखते हैं कि इस मामले में क्या करना है, अभिमन्यु ने जवाब दिया। पृथ्वी ने आगे कुछ नहीं कहा और बाहर जाने लगा। इसी बीच इशिका भी ऑफिस आ गई थी, उसके हाथ में एक फाइल थी। इशिका ने उस फाइल को अभिमन्यु के सामने रखते हुए कहा, ये स्कॉट एंटरप्राइजेस की फाइल है जहां एक्सीडेंट से पहले मैं गई थी। ये कंपनी पूरी तरह फ्रॉड है और मैंने इसके खिलाफ रिपोर्ट भी बनाई थी, जरूर उन्होंने ही मेरा एक्सीडेंट करवाया होगा। हाँ इनके पीछे उन्हीं का हाथ है, बट डोंट वरी आजकल उनकी हालत खराब है। तुमने न्यूज में देखा नहीं कि कैसे इनके इलीगल काम एक एक करके बाहर आ रहे हैं, अभिमन्यु ने बताया। उसके चेहरे पर हल्की कॉन्फिडेंस वाली स्माइल थी। हाँ मैंने न्यूज भी देखी और सारे आर्टिकल भी, नक्श की कंपनी भी इसी से जुड़ी हुई थी और अब मुझसे बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, ये तुमने और आशिका ने किया है ना, इशिका ने उसे घूरते हुए पूछा, जिस पर अभिमन्यु ने बिना कुछ कहे कंधे उचका दिए थे। इशिका ने गहरी सांस ली, उसके चेहरे पर हल्के परेशानी के भाव थे। अभिमन्यु ने उसे समझाते हुए कहा, सब हैंडल हो रहा है, फिर भी बेवजह क्यों डर रही हो। डरने की बात है अभिमन्यु, ये कंपनी कई देशों के साथ जुड़ी हुई थी और अब तक वो इस मुकाम पर पहुंची थी तो जरूर इसमें कुछ पॉलिटिकल लीडर्स और बड़े लोगों का हाथ रहा होगा। इन सबको हैंडल करने वाले दो दोस्त थे और आजकल वे गायब हैं। मुझे डर है कि वे हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करें, किसी न किसी से उन्हें पता चल ही जाएगा कि उनके पीछे किसका हाथ है, इशिका ने परेशान स्वर में कहा। पता चल जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, और दूसरी बात आशिका ने अपना काम बहुत स्मार्टली किया था, अभिमन्यु ने सख्त आवाज में जवाब दिया। इससे पहले कि इशिका इस बारे में और बात करती उसने जल्दी से टॉपिक चेंज करते हुए कहा, और तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम प्रेग्नेंट हो इशिका, इस बात को बार बार क्यों भूल जाती हो, मैंने तुम्हें काम करने से नहीं रोका, इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम पूरे दिन इसी में लगी रहो और स्ट्रेस लो। इशिका ने उसकी बात पर आंखें घुमाई और उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। अभिमन्यु ने भी उस बात की तरफ खास ध्यान नहीं दिया। दूसरी तरफ एले में रिहान आशिका के घर पर था, उसके जाने के बाद सारे काम वही संभाल रहा था और इस वक्त अपने टास्क में लगा हुआ था। उसके पास बार बार सीक्रेट सिक्योरिटी एजेंसी कॉल कर रही थी और वो इग्नोर किए जा रहा था।
उन्हें पहले ही उनके मैसेज और कॉल मिल गए थे। वे आशिका को फिर से अपनी टीम में चाहते थे। एक बार फिर से उनके किसी ऑफिसर का कॉल आने पर रिहान ने अपना सिर पकड़ा और कहा, आखिर ये लोग हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? जब हमें जरूरत होती है तब ये हमेशा की तरह अपना काम करके गायब हो जाते हैं, और अब इन्हें जरूरत पड़ रही है तो ये हमें परेशान कर रहे हैं। ऐसा समझ लूं मर गई ऐश, वो वापस नहीं आने वाली है। इतनी मुश्किल से उसे अपनी लाइफ में खुशियां मिली हैं, लेकिन ये है कि इन्हें अभी भी अपने सेल्फिश रीजन के चलते उसे कॉन्टैक्ट करना है। अरे दुनिया भर में और भी हैकर्स हैं, जाकर उनसे कॉन्टैक्ट करें ना। रिहान उनके बार बार फोन कॉल से परेशान हो गया था। उसने अपना मोबाइल बंद करना चाहा, लेकिन गलती से उसने उनका कॉल अटेंड कर दिया था। जैसे ही कॉल अटेंड हुआ और सामने से आवाज आई तो रिहान ने इरिटेट होकर अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया था। तुम हमारे कॉल कैसे इग्नोर कर सकते हो, जबकि अच्छे से जानते हो कि हम लोग तुम्हें तभी कॉन्टैक्ट करते हैं जब मामला देश और दुनिया की सिक्योरिटी से जुड़ा हो। तुम्हें कंट्रीज को सर्व करने का मौका मिल रहा है और तुम पीछा छुड़ाना चाहते हो। सामने से एक आदमी की तंज भरी आवाज आई। मैंने जानबूझकर कॉल अटेंड नहीं किया, क्योंकि ऐश यहाँ नहीं है। चाहे तो आकर खुद चेक कर सकते हो, रिहान ने झुंझलाहट भरे स्वर में जवाब दिया। अगर यहाँ नहीं है तो जहाँ भी होगी उसके बारे में तुम्हें पता है। तुम्हें एक हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ। अगर तुम ऐश को लेकर मेरे बताए बेस में नहीं पहुंचे तो मैं खुद उसे ढूंढ कर लेकर आऊंगा, और अगर हमने उसे ढूंढा तो उसे हमारे लिए काम करना होगा और उसकी ये आज़ादी हमेशा के लिए छिन जाएगी, सामने वाले आदमी ने सख्त आवाज में कहा। उसकी बातों में कोरी धमकी नहीं थी और ये बात रिहान अच्छे से समझ सकता था। रिहान एक पल के लिए हड़बड़ाया और फिर उसने बेपरवाही से कहा, हाँ तो जाओ खुद ढूंढ लो, जब खुद ढूंढ सकते हो तो फिर मुझे क्यों कॉल किया है? आगे से मुझे परेशान मत करना।
इतना कहकर रिहान ने जल्दी से कॉल कट कर दिया था। उसे जो धमकी सामने से सुनने को मिली थी उससे उसके माथे पर हल्का सा पसीना आ गया था। उसने जल्दी से पानी का गिलास एक घूंट में खाली कर दिया था। ये और इनकी बड़ी बड़ी धमकियां, रिहान हल्के से हंसकर बोला, लेकिन फिर अगले ही पल उसके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। उसने दांत पीसते हुए कहा, ये इतने बुरे कैसे हो सकते हैं जो हमें अपने साथ काम करने पर मजबूर कर रहे हैं? कभी कभी मुझे ये देश के लिए काम करने वाले कम और गुंडे ज्यादा लगते हैं। कहीं सच में इन्होंने ऐश को ढूंढ लिया और अपने साथ काम करने पर मजबूर किया तो? रिहान काफी कंफ्यूज हो रहा था। वो जानता था कि अभी अभी आशिका की नई जिंदगी शुरू हुई है और वो उसमें खुश भी थी। आशिका हमेशा से एक नॉर्मल लाइफ चाहती थी और अब फाइनली जब उसे वो मिल रही थी तो रिहान उसे किसी तरह के सीक्रेट मिशन पर भेजकर उसकी खुशियों को बर्बाद नहीं करना चाहता था। कौन जानता था कि ये मिशन कितने वक्त के लिए चलने वाला था। ऐसा करता हूँ, इग्नोर ही करता हूँ, ऐश को भी इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, वरना उसे पता चला तो वो सब कुछ छोड़कर वहाँ चली जाएगी। हाँ, यही करना सही होगा, रिहान ने मन ही मन खुद को तसल्ली दी और आशिका को इस बारे में कुछ भी ना बताने का डिसाइड किया। रिहान वापस काम में लग गया था तो वहीं अभिमान भी आशिका के साथ अपने केबिन में था। दोनों एक साथ जरूर थे लेकिन अपने अपने कामों में लगे हुए थे। लंच ब्रेक होने पर अभिमान ने आशिका की तरफ देखा जो अभी भी काम में डूबी हुई थी। उसने आंखें घुमाई और कहा, खाना तो टाइम से खा लिया करो, फिर लोगों को बताती हो कि तुम्हारे अंदर ब्लड डेफिशिएंसी है। मुझे क्यों नहीं बताया? हम डॉक्टर के पास चलते और आगे से तुम टाइम से खाना खाओगी और सही डाइट लोगी। अभिमान की बातों से लग रहा था जैसे वो पृथ्वी के जाने के बाद से ही आशिका को एक अच्छा खासा लेक्चर देना चाहता था, लेकिन आशिका ने उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। जैसे ही पृथ्वी वहां से बाहर निकला वो टेक लैब से अपना लैपटॉप लेकर आई और कामों में लग गई थी। आशिका ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा और बेपरवाही भरे अंदाज में बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मना क्यों किया? अभिमान ने हैरानी से पूछा। मेरा मन नहीं था और वैसे भी मुझे इंजेक्शन और इस सब ब्लड डोनेशन से डर लगता है। सीधे मना करती तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए बहाना बना दिया। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? आशिका ने उसे घूरते हुए पूछा, जिस पर अभिमान ने जल्दी से नामे सिर हिला दिया था। ठीक है, फिर तुम मेरे साथ जाना रहने देना, अभिमान ने जवाब दिया। नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, इसी बहाने मैं इशिका से मिल लूंगी। तुम लंच करने जा सकते हो, मुझे कुछ जरूरी काम करना है, मैं खाना खाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, आशिका ने हल्की बेरुखी से कहा और वापस अपने काम में लग गई थी। अभिमान को यही लग रहा था कि आशिका अपने काम में खोई हुई है, जबकि उससे अलग आशिका तो आशुतोष किम्हानिया की फैमिली की पूरी हिस्ट्री और बाकी पुराने न्यूज आर्टिकल्स को देख रही थी। वो जानना चाहती थी कि आशुतोष की बात में कितनी सच्चाई है और तृप्ति ने उनकी बेटी को किडनैप क्यों किया होगा। अभिमान ने गहरी सांस ली और उठकर चला गया था। आशिका ने एक नज़र उसकी तरफ देखा, उसे यही लगा था कि अभिमान उसके साथ जिद करेगा कि वो उसके साथ खाना खाने चले। लगता है सबकी तरह तुम भी मेरे इस अजीब बिहेवियर को एक्सेप्ट कर रहे हो। खैर, मैं भी क्या उम्मीद लगाकर बैठी थी, तुम मेरी पहले ही काफ़ी हेल्प कर रहे हो और मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जिसे खाना खाने जैसी छोटी चीज़ के लिए समझाना पड़े। आशिका खुद को मन ही मन तसल्ली दे रही थी कि अभिमान ने उसे दोबारा खाना खाने के लिए फोर्स क्यों नहीं किया। आशिका ने गहरी सांस ली और अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़कर बैठ गई थी। उसका काम में चाहकर भी मन नहीं लग रहा था और अनजाने में उसे पुरानी बातें याद आ रही थी। जब वो तृप्ति और सेलिना के साथ रहती थी तब तृप्ति उसे खाना नहीं देती थी, और जब सेलिना खुद भी खाना खाने से मना कर देती तो तृप्ति उसके साथ जिद करके उसे ज़बरदस्ती खाना खिलाया करती थी।
तृप्ति का कहना कुछ हद तक सही था। आशिका के दिल का एक कोना अभी भी खाली था जो किसी के प्यार के लिए तरसता था। आशिका की आंखें डबडबाने लगी। उसने खुद को शांत करने के लिए पानी का गिलास उठाया ही था कि तभी अभिमान ऑफिस के अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में खाने की प्लेट थी। तुम्हारे पास खाना खाने का टाइम नहीं है लेकिन मेरे पास है। तुम अपना काम करती रहो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। बस तुम्हें अपना मुंह खोलना है, अभिमान ने आशिका की तरफ आकर कहा और एक चेयर को खिसकाकर उसके पास में बैठ गया था। आशिका हैरानी भरी निगाहों से उसकी तरफ देखने लगी। एक पल पहले वो अभिमान को जज कर रही थी कि उसने उसे फोर्स नहीं किया। अभिमान अपने हाथों से आशिका को खाना खिलाने लगा लेकिन वो आंखों में नमी लिए उसे देख रही थी। देखो, अब तुम्हें मुंह तो अपने आप खोलना होगा, इस तरह मुझे मत देखो। मुझे पता है तुम्हें इस तरह के बिहेवियर की आदत नहीं है और मैं तुम्हें इरिटेटिंग लग रहा हूँ, पर चाचू ने कहा था कि हम दोनों थोड़ी कोशिश करेंगे तो एक दूसरे को एक्सेप्ट कर ही लेंगे। तुम ओवर इग्नोरिंग हो और मैं शायद ओवर केयरिंग, अभिमान ने उसे समझाया और फिर उसके कहने पर आशिका ने खाना खाने के लिए मुँह खोल दिया था। उसने एक नज़र अभिमान की तरफ देखा। जो काम तृप्ति ने कभी नहीं किया वो अभिमान कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ शॉपिंग करने के बाद यज्ञ घर की तरफ लौट रहा था, तभी उसने तृप्ति और आशी को साथ में देखा। उन्हें साथ देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई थी। आशी अच्छे से जानती थी कि सिंघानिया फैमिली तृप्ति से कितनी नफरत करती है और उसकी वजह क्या थी, फिर भी वो तृप्ति के साथ घूम रही थी। ऊपर से वो खुश भी नजर आ रही थी।